अरपा रेडियो डॉट कॉम की प्रस्तुति भारतीय इतिहास। मुगल साम्राज्य की स्थापना। पिछले पाठों में हमने समझा कि तुर्क सुल्तानों ने छोटे छोटे कई राजाओं को हराकर एक विशाल सल्तनत की स्थापना की। लगभग 200 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। शासन करने वाला अंतिम वंश लोदी वंश था, जिसकी स्थिति कमजोर थी। उन दिनों पूरे भारत में फिर से कई छोटे राज्य बन गए थे। बाबर, सन 1526 से 1530। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर को तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था। वो 13 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने उसे फरगना के बाहर कर दिया। बाबर लगातार संघर्ष करता रहा, पर फरगना पर अधिकार नहीं कर पाया। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया। काबुल में वो अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा। मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे, इसलिए बाबर को वहाँ कुछ स्थायी सफलता नहीं मिली। उस समय उत्तर भारत के कुछ भागों में लोदी सुल्तानों तथा राजपूत राजाओं का शासन था। इसी समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने, जो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना चाहता था, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थीं, जो भारत के शासकों के पास नहीं थीं। उसके पास कुशल तीरंदाज घुड़सवार थे, जो लोदी सेना में नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुभवी थी। बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया, इसलिए बाबर की विजय हुई। बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे, लेकिन बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहता था। अपनी विजय को बनाए रखने और अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आसपास के कई राज्यों को हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाबर और राणा सांगा। उन दिनों राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत राजा था। एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया। राणा सांगा अनुभवी और कुशल सेना नायक थे। उसके साथ कई राजपूत राजा और अफगान सरदार मिल गए थे। राणा सांगा की सेना में बाबर की सेना से ज्यादा सैनिक थे। राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई। उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे। ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया। बाबर ने भविष्य में कभी शराब न पीने का संकल्प किया। उसने सैनिकों को एकत्र कर एक जोशीला भाषण दिया। वीर सैनिकों, इस दुनिया में जो जन्म लेता है वो एक दिन अवश्य मरता है। हिम्मत से युद्ध करो। यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो हमें साम्राज्य मिलेगा, यदि मारे गए तो शहीद होंगे। सम्मान के साथ मरना अपमानित जीवन से कहीं अच्छा होता है। बाबर के भाषण का उसके सैनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सन 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने कोई शक्तिशाली शत्रु न रहा। इस तरह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता को स्थापित किया। बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था। उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बनवाए। बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तार पूर्वक अपनी आत्मकथा में लिखा है। ये तुर्की भाषा में है और इसका नाम तुजुक ए बाबरी है। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। हुमायूं, सन 1530 से 1558। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं बादशाह बना। पिता के जीते हुए इलाकों को संभालने में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ आईं। हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के सुल्तान, राजपूत और अफगान सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल रहा, किंतु पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित न कर सका। इस क्षेत्र के अफगान सरदार शेर शाह ने उसे हरा दिया। इस हार के कारण हुमायूं को सन 1540 में भारत से भागना पड़ा। इसके बाद लगभग 15 सालों तक वो भटकता रहा। उसने ईरान के शाह की शरण ली और उसकी मदद से सन 1555 में फिर से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन सन 1556 में दिल्ली के पुराना किला में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह, सन 1540 से 1545। आप ये जानते हैं कि हुमायूं को बिहार के शेर शाह नाम के अफगान सरदार ने हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। शेरशाह एक अफगान सरदार का पुत्र था। बिहार के सासाराम में उसकी छोटी सी जागीर थी। उसने कई छोटे बड़े राजपूत और अफगान सरदारों को हराया। शेरशाह ने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुधार किए। उसका एक राज्य अधिकारी राजा टोडरमल ने भू सुधार कार्य में सहयोग दिया। शेरशाह के शासन में सड़कें, सराएं और जल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि आम जनता को सुविधाएं प्राप्त हों, जिन्हें बाद में अकबर ने भी अपनाया और आगे बढ़ाया। शेरशाह ने नए सिक्कों का चलन प्रारंभ किया। पहला था तांबे का सिक्का, जिसे दाम कहते थे। दूसरा चांदी का सिक्का, जिसे रुपया कहते थे। उसने सासाराम में अपने लिए एक भव्य मकबरा भी बनवाया। इसके समय में सड़क निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन शेरशाह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। सन 1545 में कालिंजर दुर्ग में आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर बहुत छोटा था। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। बालक अकबर के लिए ये बहुत बड़ा दायित्व था। बालिग होने तक अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान की देखरेख में राजकाज किया। फिर उसने शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली और योग्यता पूर्वक शासन किया। राज्य विस्तार। अकबर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने आसपास के क्षेत्रों में विजय अभियान शुरू किया। उसकी सेना ने बहुत तेजी से पूरे उत्तर भारत पर विजय पाली। सन 1561 में मालवा, 1564 में गोंडवाना, 1568 में चित्तौड़, 1572 में गुजरात और 1574 में बंगाल मुगल साम्राज्य के भाग बन गए। फिर सन 1586 से 1600 के बीच कश्मीर, सिंध, कंधार, उड़ीसा और दक्षिण में बरार, अहमदनगर और खानदोश भी साम्राज्य में मिला लिए गए। अकबर एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसका भारत के सभी महत्वपूर्ण और ताकतवर लोग साथ दें। शुरू में उसके प्रमुख अधिकारी और सेनापति बाहर से आए तुरानी या ईरानी लोग थे। धीरे धीरे अकबर ने भारतीय मुसलमान, खासकर वे लोग जो सूफी संतों के परिवारों से थे, और अफगान जमींदारों को सल्तनत का अधिकारी बनाया। वो राजपूत राजाओं को भी अपना अधिकारी बनाना चाहता था। इसके लिए उसने राजपूत राजाओं के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने राजपूत राजाओं से वादा किया कि अगर वे उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे तो उनका राज्य लौटा देंगे। उन्हें बड़े बड़े पद भी दिए जाएंगे और वो किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगा। उसने अनेक राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित। उसने जयपुर के पास स्थित आमेर के कछवाहा वंश के राजा भारमल की सहायता की तथा उसके पुत्र भगवान दास तथा पोते मान सिंह को शाही सेवा में ऊंचे पद दिए। राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया। शादी के बाद भी राजपूत रानियों को संपूर्ण धार्मिक आज़ादी थी। अकबर की राजपूत नीति के कारण अनेक राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के राजा प्रताप को छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। अकबर और राणा प्रताप। सन 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसिंह एवं राजकुमार सलीम के नेतृत्व में एक विशाल सेना चित्तौड़गढ़ भेजी। मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना विजयी हुई, किंतु राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर अपने जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने मंत्री मेवाड़ के भामा शाह द्वारा उन्हें यानी राणा प्रताप को समर्पित धन से अपनी सेना का पुनः संगठन किया और अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने में राणा प्रताप सफल भी हुए। रानी दुर्गावती और अकबर। गोंडवाना या गढ़ा कंटगा विस्तृत और संपन्न राज्य थे। इस राज्य की राजधानी चौरागढ़ थी और मुख्य निवासी गोड़ थे। सन 1548 में राजा दलपत के देहावसान के बाद रानी दुर्गावती अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी और अपने मंत्रियों के परामर्श एवं सहायता से सफलतापूर्वक शासन करती रहीं। अपनी उदारता, दक्षता और सुयोग्य प्रशासन से गोंडवाना में उसने राजनीतिक एकता स्थापित कर ली थी। गोंडवाना की समृद्धि और धन संपन्नता को देखकर साम्राज्य विस्तार की भावना से अकबर आक्रमण करना चाहता था, इसलिए आसिफ खां के नेतृत्व में उसने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी ने कवच और शिरस्त्राण धारण कर हाथी पर सवार होकर मुगल सेना पर आक्रमण किया। इस बीच दुर्भाग्य से उसे एक तीर लगा जिससे वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसे अपनी पराजय का पता चला। शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने की आशंका से छाती में कटार भोंककर शहीद हो गई। छत्तीसगढ़ उस समय रतनपुर राज्य कहलाता था। यहाँ पर कलचुरी राजवंश का प्रशासन प्रभावशील था। इस तरह अकबर की नीतियों के कारण उसके पदाधिकारियों में ईरानी व तुरानियों के अलावा अफगान, भारतीय मुसलमान, राजपूत राजा आदि भी शामिल हो गए थे। शासन व्यवस्था। अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की? उसने अपने विशाल साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा। सूबों का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसा ही था। प्रत्येक सूबा या प्रांत सरकारों यानी जिलों में बटा था और प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों यानी तहसीलों में विभाजित था। कई गांवों के समूह से एक परगना बनता था। अकबर ने केंद्र से लेकर परगना तक जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया। मुगल शासन के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था। मुगल साम्राज्य में काम करने वाले अधिकारियों व सेनापतियों को मनसबदार कहते थे। प्रत्येक मनसबदार को उसकी सेना के अनुसार एक दर्जा दिया जाता था, जिसे मनसब कहते थे। सभी मनसबदारों को बादशाह खुद नियुक्त करता था और उन पर बादशाह का सीधा नियंत्रण होता था। सभी मनसबदारों को घुड़सवारों की एक फौज तैयार करनी पड़ती थी और जब भी बादशाह को उनकी ज़रूरत पड़ती, उन्हें अपनी फौज के साथ जाना पड़ता था। बादशाह उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कहीं भी नियुक्त कर सकता था। इसके बदले मनसबदारों को, विशेषकर बड़े मनसबदारों को, बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे। वे काफ़ी शान शौकत से जीवन बिताते थे। लेकिन मनसबदारों का वेतन सीधे रुपयों में नहीं मिलता था। उन्हें किसी क्षेत्र से लगान इकट्ठा करके वेतन के बदले रखने को कहा जाता था। इन क्षेत्रों को जागीर कहते थे। वो मनसबदार उस इलाके का जागीरदार कहा जाता था। मनसबदारों का समय समय पर तबादला किया जाता था ताकि वे स्थानीय लोगों से मिलकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह ना करें। साथ ही अकबर ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई भी अधिकारी मनमानी न करे और सभी लोग बादशाह की आज्ञा का पालन करें। लगान व्यवस्था। अकबर जब बादशाह बना तो किसानों से लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था काफी कमजोर थी। छोटे अधिकारी व जमींदार किसानों पर मनमानी करते थे। लगान वसूली कभी ज्यादा तो कभी कम हो जाती थी, इसलिए अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपयों में लेंगे, न कि अनाज में। किसान जितनी ज़मीन में खेती करता था उसके हिसाब से उसका लगान तय किया जाता था। आमतौर पर किसानों को अपनी उपज का एक तिहाई या आधा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। किसानों से लगान इकट्ठा करने में स्थानीय जमींदार अधिकारियों की मदद करते थे। किसानों से इकट्ठा किए गए लगान से ही राज्य का खर्चा चलता था। धार्मिक नीति। सन 1575 से 1585 के बीच अकबर ने कई धर्म गुरुओं से उनके धर्म के बारे में चर्चा की। उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में मस्जिद के पास एक इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह बनवाया। इसमें उसने इस्लाम के विरुद्ध संप्रदायों के धर्म गुरुओं के अलावा योगियों, हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई धर्म गुरुओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इन चर्चाओं के फलस्वरूप उसके मन में ये धारणा बनी कि सभी धर्मों में सच्चाई व अच्छाई है। दुनिया में विविधता, अलग अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बने हैं, अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए। उन्हें सबके प्रति शांति, सुलह कुल की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति को बनाने में अकबर के सहयोगी अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी ने अकबर के राज्यकाल का विस्तार पूर्वक इतिहास अकबरनामा लिखा है। इसी नीति के अनुकूल अकबर ने हिंदुओं पर लागू जाजिया व तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, मंदिर बनाने की अनुमति दी और हिंदू व जैन मंदिरों व मठों को दान दिया। उसने रामायण, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। अकबर ने अपने निजी जीवन में भी कई धर्मों की बातों का समावेश किया। वो रोज सूर्य की पूजा करता था, मांस मदिरा आदि का उपयोग कम करने लगा था और दिवाली, नवरोज जैसे त्यौहार मनाता था। उसकी इस नीति से मुगल साम्राज्य को सभी लोगों का समर्थन मिला। अकबर ने करीब 50 वर्षों तक राज किया। इसके बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना।
वाचक स्वर संज्ञा। अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।